مشايخ روزے کی روح یہ ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کرے اور صبر کرے. اسی طرح روزے کی روح, مشایخ نے فرمایا کہ روزے کی روح یہ ہے کہ انسان دوسرے کو کھانا کھلائے, افطار کروائے. اور کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ روزے کی روح یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے. اس حوالے سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو انسان صرف گناہ کے بعد کرتا ہے, مگر قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کو استغفار صرف گناہ کے بعد پسند نہیں, نیکی کے بعد بھی اللہ رب العزت یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم استغفار کریں. چنانچہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے بعد یہ سنت ہے کہ استغفار کیا جائے. حج کرنے کے بعد تو قرآن پاک نے حکم دیا کہ ہم استغفار کریں, حتیٰ کہ مسلمان فوجوں کو جب کامیابی نصیب ہو تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے حکم یہی دیا کہ وہ استغفار کریں. آج کی اس مجلس میں ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا مقصود, جس کو قرآن اور حدیث میں رمضان کی روح بتایا گیا, اور وہ ہے اپنے مال کو خرچ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاصَاتِ, اور یہ مہینہ مبارک مہینہ جو ہے یہ وسعت کرنے کا مہینہ, مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی تین چیزوں میں اضافہ فرماتے تھے, قیام کو لمبا کرنے میں اضافہ فرماتے. تو رات کا قیام آپ زیادہ فرماتے رمضان المبارک. دوسرا فرمایا کہ دعاؤں کے اندر اللہ کے پیارے محبوب زیادہ گریہ فرماتے تھے, زیادہ آنسو بہاتے تھے. اور تیسرا فرمایا کہ مال خرچ کرتے تھے, ایسے خرچ فرماتے تھے کہ جیسے ان کو یہ ڈر ہی نہیں کہ یہ مال ختم ہو جائے. تو رمضان کی روح یہ ہے ہم اپنے مال کو خرچ کریں. سچی بات تو یہی ہے کہ جو شخص مال خرچ کرنے کا شوق نہیں رکھتا, اپنا مال غریبوں پر, رشتہ داروں پر, بہن بھائیوں پر, خاص طور پہ والدین پر, بیوی بچوں پہ اگر خرچ کرنے کا شوق نہیں رکھتا, تو ایسا شخص جو ہے وہ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے, اصل کی نیکی اسے حاصل نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا, لن تنالوا البر, تم ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کر لو جس سے تم محبت کرتے. تو جب تک مال خرچ نہیں ہو نیکی حاصل نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ جو انسان مال خرچ کرنے کی عادت رکھتا ہے, اللہ رب العزت اسے دل کا سکون عطا کرتا, ایسا سکون کہ جس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. قرآن پاک میں فرمایا, والذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار, جو خرچ کرتے ہیں अल्लाह का दिया हुआ माल रात में भी और दिन में भी, सिर्रं वअलानियतन, छुपके भी खर्च करते हैं, ऐलानिया भी खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कभी कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन हो। तो माल खर्च करने से इंसान सच में नेक बनता है, और माल खर्च करने से ही इंसान जो है उसको दिल का सुकून नसीब होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि माल तो खर्च करें अमीर लोग, गरीब आदमी कहाँ से माल खर्च कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया। आपने फरमाया कि मालदार वो नहीं है जिसके पास बहुत माल और जायदाद हो, मालदार तो वो है जो दिल का अमीर है। और फरमाया करते थे कि ये जो मेरे गरीब साहबी हैं, जब ये एक मुट्ठी बराबर जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको पहाड़ बराबर सोना खर्च करने का अजर अता करे। तो माल खर्च करने के लिए अमीर होना कोई शर्त ही नहीं है, माल खर्च होने करने के लिए दिल होना शर्त है। तो जिसने माल खर्च कर दिया उसको तीन नेमतें मिल गई। एक ये कि वो वाकईतन नेक बन गया, वाकईतन नेकी उसने पा ली। दूसरा ये कि जिसने अपना माल खर्च करने की आदत रखी, दिन रात में खर्च करता है, हर वक्त सोच यही होती है कि मेरे माल से दूसरों को फायदा हो, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून अता फरमाते हैं। और तीसरा फायदा ये कि जो माल इंसान खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ा देते। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के नबी कसम खा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि माल सदका करने से तुम्हारे मालों में कमी नहीं आती। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 गुना बढ़ा के वापस फरमाते हैं, कभी कभी 100 गुना वापस बढ़ा के वापस करते हैं, कभी कभी 700 गुना बढ़ा के वापस फरमाते हैं, और कभी कभी उससे भी ज्यादा बढ़ा के वापस। मदीना मुनव्वरा में कहता आया खाने पीने की अशिया मफकूद हो गई, बहुत ही थोड़ा बहुत रह गया। बड़े कारोबारी शख्स जो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में थे, वो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, और हजरत उस्मान उन्होंने बाहर के किसी इलाके से एक पूरा कारवान मंगवाया था, बड़ा कंसाइनमेंट जिसको कहते हैं, खाने पीने की अशिया। तो ताजिर जो थे मदीना मुनव्वरा के, उनको भी पता था कि सबसे बड़ा कंसाइनमेंट इनका आना है खाने पीने का। तो उन्होंने सोचा कि हम पहले ही जाके हजरत उस्मान से बात कर ले कि ये सारा जो है ये हमें बेचने हैं, भाव भी कर लेते हैं, कहत का वक्त है तो ज्यादा कीमत भी लगा देंगे ताकि ये सारा का सारा हमें बेचें और किसी को ना बेचें। तो सारे ताजिर मिलके उनके पास गए और पहले से बात करके गए, आपस में फैसला कर लिया कि क्योंकि कहत का वक्त है तो हम इनसे कहेंगे कि जो माल आ रहा है जो उसकी आम कीमत चलती थी, हम उससे दुगनी कीमत देंगे, तो ये भी राजी हो जाएंगे कि अच्छी कीमत मिल रही है और हमें भी ये माल सारा मिल जाएगा ताकि हम अपना कारोबार जारी कर सकें। तो तो ये सब उस्मान रजी अल्लाह उन्हों की खिदमत में हाजिर हुए कि उस्मान आपने अपना माल कहीं और नहीं बेचना, सारा का सारा हम ही बेचेंगे, फिर हम आप इसमें तकसीम कर लेंगे और हम आपको दुगनी कीमत देंगे, तो आप ये हमसे तय करें कि आप ये सारा का सारा हमें बेचेंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, एक है जो मुझे दुगनी कीमत से भी ज्यादा दे रहा है। तो ताजिरों ने आपस में मशवरा किया कि जी दुगनी कीमत से भी ज्यादा इनको कहीं और से मिल रहा है। सोचा कि हाँ सही कह रहे होंगे, हो सकता है, मगर इतना ज्यादा कौन देता होगा तो दुगनी कीमत से भी ज्यादा। मगर आपस में फैसला किया कि ठीक है, कहर का वक्त है, कोई होगा जो दे रहा होगा दुगनी कीमत से ज्यादा, हालांकि मुश्किल नजर आ रहा है। तो तय किया कि हम उनको 3 गुना कीमत अदा करेंगे, ताकि ये सारा माल किसी और को ना बेचे, हमें ही बेच दें। तो फिर सारे ताजिर मिलके सैयदना उस्मान रजी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि उस्मान, आपने ये माल किसी को नहीं बेचना, आपने आपस में फैसला कर लिया है, हम 3 गुना कीमत अदा करने के लिए तैयार। और ये सारे ताजिर सोच रहे थे कि 3 गुना बहुत बड़ी कीमत है, मगर जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, एक है जो मुझे इससे भी ज्यादा कीमत अदा कर। अब ये ताजर आपस में फिर उसी वक्त उन्होंने मुलाकात की कि क्या ऐसा मुमकिन है, उस्मान आमतौर पे गलत बयानी तो नहीं करते, क्योंकि उनको थोड़ा शायबा हुआ कि 3 गुना से ज्यादा कौन दे रहा हो। उन्होंने कहा कि तो बोलते नहीं है, सकता है कोई इससे ज्यादा दे रहा हो। बड़ी मुश्किलों से इस पे उन्होंने इत्तेफाक किया कि हम 4 गुना कीमत अदा करें। उन्होंने कहा उस्मान ठीक है, आपको अगर इससे कोई ज्यादा दे रहा था, हम 4 गुना कीमत देने के लिए तैयार हैं, अब ये फैसला आप कर लें कि आपने सारा माल हमें ही बेचना है। हजरत उस्मान ने फौरन फरमाया कि नहीं, एक है जो मुझे इससे भी ज्यादा दे रहा है। अब ये ताजिर जो थे उनसे ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने कहा कि नाम बताएं कौन है जो इतनी कीमत लगा रहा हो, 4 गुना से भी ज्यादा लगा रहा हो। आपने फरमाया कि मैं कारोबार उसके साथ कर रहा हूं जो कभी कभी 10 गुना देता है, कम से कम 10 गुना देता है, वरना 100 गुना भी देता है, 700 गुना भी देता है, उससे भी ज्यादा देता है। ये कह के आपने फरमाया ये सारा का सारा माल जो है ये मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों पे सदका किया जा रहा है। तो असल नेक इंसान वो है जो माल खर्च करने का शौक रखता हो। माल खर्च करने के 3 बड़े फायदे, वाकईतन इंसान नेकी के नेक कहलाने के काबिल बनता। माल खर्च करने से इंसान को दिली सुकून नसीब होता है, माल खर्च करने से माल बढ़ जाता है। इसीलिए ये रमजान का महीना ये माल खर्च करने का महीना है, वसत करने का महीना है, ये इस मुबारक महीने की रूह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये रूह हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। थोड़ी देर के लिए समुद्र रात में रात बदल ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका। क्या दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जा किसी को शौक कर मजबूर हो जाना। मताए जाऊं किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। अदम है दार उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। कदम है दार उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो है मंजिल है थकन से चूर हो जाना। यहाँ तो है मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। محمد رسول الله يغفر لجيل سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك